अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? तो मैं सात सेवन सजेशन इधर भी दूंगा मैं। सबसे पहली बात, भाई मान जाएं, नाराजगी खत्म कर लें, माफ कर दें और माफी मांग लें। देखें, एक मसला ये हुआ है कि हम सब ने माफी मांगने का जो उसूल अपने लिए अपनाया है वो ठीक नहीं है। वो उसूल, बहुत से लोगों का उसूल ये है कि जब तक मुझ पर मेरी गलती वाजे नहीं होगी, साबित नहीं होगी, बल्कि बहुत से लोग तो ये करते हैं कि मुझ पर मेरी गलती मुझी को पता है ना, जब तक उसको भी नहीं पता लग जाएगी और वो मुझ पर प्रूव नहीं कर देगा और वो एविडेंस नहीं देगा दे देगा कि गलती मेरी है, तब तक मैं नहीं माफी मांगूंगा। मतलब अगर गलती मुझे तो पता है, उसे नहीं पता तो भी माफी मांगने पर राजी नहीं है। तो माफी मांगने का उसूल ये ठीक नहीं है। ये जो चार किस्म के इंसान मैंने बयान किए ना, जो अपनों से ताल्लुक है, इसमें माफी मांगने का उसूल ये नहीं चलेगा, इससे रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे। बल्कि उसूल क्या है? उसूल ये होगा कि अगर आपको अपनी गलती नहीं समझ में आई है, आपने गलती की भी नहीं है और आपको अपनी गलती की कोई समझ भी नहीं आ रही कि मुझसे कोई गलती हुई है, आपको कुछ नहीं आइडिया कि आपसे कोई गलती हुई भी है या नहीं हुई, उसके बावजूद आगे बढ़ के आप माफी मांग लें, ये उसूल अपना लें। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि गलती क्या है और मेरी क्या गलती हुई है, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उससे माफी मांग ली कि भाई देखो, हो सकता है कि मेरी तरफ से कोई बात ऐसी हो, बल्कि हो सकता है क्या, मैंने जरूर ऐसी बात की होगी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची है, तो बहरहाल मुझे माफ कर दो। अगर आप ऐसा करने पे कादिर हो जाएं तो आपसे ताल्लुक खराब होना किसी के लिए आसान नहीं होगा। मतलब एक बहुत बदमिजाज इंसान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा आपसे ताल्लुक को खराब करना, अगर आपको ये सलाहियत आपके अंदर पैदा हो गई। यानी आप उस इंसान से नहीं जीत सकते जो आसानी से माफ कर देता है और माफी मांग लेता है। यानी उस इंसान से जीता नहीं जा सकता जिसके लिए माफी मांगना और माफ करना आसान है। बदमिजाज इंसान भी उस इंसान से अपने ताल्लुक को बड़ी मुश्किल से खराब करेगा, आसानी से खराब नहीं करेगा। यानी कोशिश भी कर ले तो ताल्लुक खराब होना मुश्किल हो जाए। यानी क्योंकि आप माफी मांगना आपके लिए आसान है, आप माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, इसको सोचने की जरूरत है। फिर एक बात और भी इसी के अंदर, जिस बात को आप माफ कर चुके हैं ना, उसको ना सोचिए, उसका जिक्र ना कीजिए और उसको भूल, मतलब ठीक है, उसकी एक गलती थी, आपने माफ कर दी, अब जिस बात को आप माफ कर चुके हैं उसको भूलने की कोशिश करें, और अगर भूल नहीं पा रहे तो कम से कम रिकॉल करने की कोशिश नहीं करें, उसका जिक्र करने की कोशिश नहीं करें, उसका जिक्र सुनने की कोशिश नहीं करें, कम से कम इतना करें। तो ये एक पहला मैं समझता हूँ पॉइंट है। तो जैसे अभी है ना कि हमारी अपनी माँ या बाप, बहन भाई, औलाद, मियाँ बीवी के से रिश्ता ताल्लुक खराब हुआ है, तो बस बिस्मिल्लाह करें, दिल में इरादा करें, बस मैं अब उसको कह दूंगा, माफी मांग लूंगा, खुद ही आगे बढ़ के पहल कर लूंगा। कुछ लोगों का एक मसला ये है, वो ये कहते हैं कि हर दफा मैं ही पहल करूं, मतलब पिछली दफा भी तो मैंने ही की थी ना, हमेशा मैं ही पहल करता हूं, मतलब कभी वो भी करेंगे ना पहल। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, वो फिर बहुत सी बातें मुझे लगता है कि पॉपुलर ज्यादा हो गई हैं, अडॉप्ट कम हुई हैं। जैसे वो जुमला था ना कि जिसका फहम ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, माफ करने की भी, माफी मांगने की भी। इसको अपने स्टेटस पे लगाना या इसको आगे शेयर करना और इसको लाइक करना, ये आसान काम है, इस उसूल को इख्तियार करना मुश्किल काम है। तो असल मसला ये हुआ है कि बहुत से लोगों ने इसको, ठीक है वो आप इसकी तशहीर कर रहे होते हैं, जज्बे से कर रहे होते हैं, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी असल, मुझे तो फायदा उस वक्त होगा जब आप इस उसूल को इख्तियार करेंगे, क्योंकि मुझे अजर उसी सूरत में मिलेगा। तशहीर में भी शायद मिल जाए वो, क्योंकि आपके जरिए हो सकता है कहीं और पहुंचे, लेकिन अगर सिर्फ तशहीर से तशहीर ही होती है तो फिर कोई फायदा नहीं है। असल में अमल में जाने की जरूरत है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पे अमल करने वाला बनाए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अपने ताल्लुक के खराब होने की जो वजूहात हैं उन पर गौर करें, अपनी गलतियां समझिए, उन्हें ना दोहराइए, उनको तौबा कीजिए कि भाई मतलब अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। अब इसके लिए क्या करना होगा? अपने मिजाज का, यानी अब अपने साथ वक्त गुजारिए। मतलब अगर आप चाहते हैं, ताल्लुक के खराब होने की वजूहात पे गौर कर रहे हैं, आप जो हैं वो अपनी गलतियां समझ रहे हैं और आप इरादा कर रहे हैं कि मैं इन गलतियों को रिपीट नहीं करूं और मेरे करने का क्या काम है, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने, तो इसके लिए आपको अपने साथ कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा, अपनी कुछ मसरूफियात कम करनी पड़ेंगी। मुमकिन हो तो ब्रेक ले लें, मुमकिन हो तो एक हफ्ते दो हफ्ते की, बहुत अच्छा है कि एक साल का ब्रेक ले लें, मतलब लेकिन बहरहाल ये इतना बड़ा ब्रेक तो शायद हो सकता है ना ले सकें, लेकिन जितने दिन का ब्रेक लें उतना बेहतर है। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जितने दिन का ले सकते हैं उतने दिन का ले लें, अब ये आपके ऊपर है। ब्रेक लें, गौर फिक्र करें, सोचें कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मैं अब फ्री टाइम अपने लिए क्रिएट करें, कुछ अपनी डायरी लिखें, कुछ अकेले वॉक पे जाएं, कुछ अपने साथ कुछ टाइम लगाएं, और फिर ये देखें कि मेरे रिलेशनशिप को खराब ये कैसे हुआ, कब से खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, कितने अरसे से खराब हो रहा है, क्या मुझे क्यों नहीं पता लगा कि रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हम दोनों दूर हो गए, कैसे दूर हो गए, हमें क्यों नहीं पता लगा हम दूर हो गए और क्यों हो गए, मेरे करने का काम क्या है। तो ये सारी चीज जो है ना, इस पे थोड़ा सा अपने साथ टाइम लगाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि उनके साथ वो सलूक कीजिए जो आप सही समझते हैं और खुद अपने लिए चाहते हैं। मतलब आप उनके साथ वो सलूक नहीं करें जो वो आपके साथ करते हैं, बल्कि आप वो सलूक करें जो आपके ख्याल में सही सलूक क्या है, सही सही बर्ताव, सही रवैया क्या है जो उनके साथ करना चाहिए, आप वो करें उनके साथ, या वो करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। तो इसमें भी आप अपने मिजाज का भी जायजा लीजिए, आपके मिजाज का कोई मसला है क्या, और उस पर काम कीजिए। तो एक फीडबैक भी ले सकते हैं आप, इन चार किस्म के इंसानों से पूछ सकते हैं कि भाई आपको मेरी क्या बात अच्छी नहीं लगती। चाहें तो एक SMS अभी कर दें लोगों को, वो एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दें, उस टेक्स्ट ये लिखें कि भाई इन चार किस्म के इंसानों को एक जुमला लिखें कि भाई आई वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ यू लेट मी नो कि मेरी मेरे रवैये की मे व्हाट इन माय बिहेवियर मेक्स यू फील हर्ट या मेक्स यू फील इरिटेटेड या मेक्स यू अनकंफर्टेबल, और उसमें बताएं कि आप बताएं कि आई एम अटेंडिंग अ वर्कशॉप या आई एम अटेंडिंग अ वेबिनार जिसमें हमें ये टास्क दिया गया है कि हमें इंक्वायर करना है। मतलब दूसरा भी परेशान हो जाएगा कि ये अब कोई नया मसला लेकर आ रहे हैं, पता नहीं क्या मसला हो गया। आप उनको बस सिंपली ये कहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि मेरे मेरी कौन सी बात जो है ना वो आपको नहीं लगती, मेरे मिजाज में क्या चीज है जो आपको ठीक नहीं लगती। ये चारों किस्म के इंसानों को एक मैसेज डाल दें, बच्चों को भी, वालदेन को भी, बहन भाइयों को भी और स्पाउस को भी, और उनसे उनको साथ में एक दो जुमले और लिखें, मैं बहुत ममनून हूंगा, बाप का बहुत शुक्रिया होगा, आप प्लीज इसका मैं वाकई इसको समझना चाह रहा हूँ, आप हेजिटेट नहीं कीजिएगा, अगर आप प्लीज ओपन और फ्रैंक और बिल्कुल फेयर ऑनेस्ट फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल इसको जरा सा उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ना आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपसे डरे हुए भी होंगे, मतलब वो कहेंगे भाई ये मतलब क्योंकि इतना आसान थोड़ी है उन आपके आपकी आपके दरबार में खड़े होकर आपकी शान में कुछ कह सकना, कोई इतनी आसान बात नहीं होती, मतलब ये मुश्किल बात होती है। तो आप बहरहाल उनको जरा हौसला दें, कॉन्फिडेंस दें कि भाई वो कह लें आपसे, बिल्कुल फ्रैंकली कह दें जो है वो कह दें, बस सही है। तो जरा सा उनको, अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, कि तीसरे पॉइंट में मैंने दो बातें कही हैं कि आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसका उसूल ये हो कि जो आप सही समझते हैं ना कि इस तरह मुझे बिहेव करना चाहिए वो इख्तियार करना है, और या उस तरह का रवैया और ट्रीटमेंट जो आप अपने लिए चाहते हैं वो इख्तियार करना है, और आपने देखना है कि जो मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ उस तरह तो मैं उनसे नहीं बिहेव कर रहा, मैं तो उनसे बड़ा और रूड मैनर में बिहेव कर रहा हूं। तो इसको आप इस तरह देखें और फिर अपने मिजाज को एसेस करें, और अपने मिजाज के बारे में एक फीडबैक और एक असेसमेंट जो है वो इन चार किस्म के इंसानों से लीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो चार किस्म के इंसान है ना, इनको समझने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इनकी नीयत पर शक किए बगैर, इनसे बदगुमान हुए बगैर, इनके बारे में कोई मनफी राय बनाए बगैर, इनको समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश से क्या मुराद है? समझने की कोशिश से मुराद ये है कि अगर मैं इन चार किस्म के लोगों से पांच किस्म की बातें आपसे पूछूं, मिसाल के तौर पर आपका स्पाउस है, अगर मैं पूछूं कि उनकी आपसे मेजर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो आप उसको जो स्टेट करें ना, अब चलें ये एक्टिविटी कर लेते हैं, इसको आप ये एक्टिविटी समझ के कर लें। आप अगर मैं आपसे पूछूं, आप स्पाउस भी रख सकते हैं, माँ भी रख सकते हैं, वालिद भी, इन चार किस्म के इंसानों में से किसी एक को आप लिख लीजिए, बच्चा कोई भी, आप किसी एक को आप जरा इमेजिन करें, उसका नाम लिखें या उसके नाम का पहला लेटर लिखें, और नीचे पांच किस्म के क्वेश्चंस करूंगा, उसको आप फिर स्टेट करेंगे। इनकी आपसे मेजर एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या तवक्कुआत हैं उन्हें आपसे, क्या तवक्कुआत हैं, ठीक है? फिर उन तवक्कुआत के पीछे रीजंस क्या हैं, उनको आपसे ये तवक्का क्यों है, वो क्यों आपसे ये चाहते हैं, ठीक है? फिर उनका उनका सबसे बड़ा उनके बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर उनकी वरीज क्या हैं, उनकी टॉप 3 वरीज क्या हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें किस चीज की है, परेशानियां क्या हैं उनकी। फिर उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, विशेस क्या हैं उनकी। आप जरा लिखिए अपने स्पाउस के बारे में ये पांच बातें लिखिए, या अपने बच्चों के बारे में ये पांच बातें लिखिए, या अपने बहन या भाई के बारे में, या अपनी वालदा या वालिद के बारे में। तो अभी तो हमारी तालीम ने ना ऐसे सिस्टम एनालिस्ट पैदा कर दिए हैं जो 1,000 इंसानों पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नीड असेसमेंट करके बता सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, बॉस की पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन ये चार किस्म के इंसानों की क्या तवक्कुआत हैं, इनके क्या मामलात हैं, उसमें मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो इसको जरा देखने की जरूरत है। आप ये जो एक्टिविटी है ये जरा कीजिएगा, और करने के बाद फिर आप एक काम और कीजिएगा, इन लोगों से फिर पूछिएगा कि भाई मैंने मतलब आपकी क्या मतलब, यही सवाल आप इनसे कीजिएगा और मैच कीजिएगा क्या आपको जवाब मिलता। तो इनको समझने की कोशिश करें, और जब समझने की कोशिश करें तो समझने की कोशिश में इनके बारे में मनफी राय या इनसे बदगुमान होना या इनकी नीयत पर शक करना ये नहीं होना चाहिए। पांचवी बात ये है, इनसे बातें कीजिए। तो बातें करने में क्या करना है, देखें बातें करने से क्या फंक्शंस, मतलब आपकी और इनकी जो कॉन्वर्सेशन है ना, उस कॉन्वर्सेशन ने कुछ फंक्शंस को सर्व करना है। यानी वो कॉन्वर्सेशन सबसे पहले क्या करेगी, दूसरे की गलत फहमी दूर हो सके। बातें करने का एक ऑब्जेक्टिव ये है, आप बातें कर रहे हैं ताकि उनको आपसे कोई गलत फहमी ना हो, उनकी गलत फहमी दूर हो सके। बातें करने का दूसरा मकसद यह है कि अपने आप को उनसे मुताल्लिक बदगुमानी से बचा लूं। मुझे आपसे बदगुमानी हो रही है तो मैंने बातें की तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो ऐसे नहीं था, ऐसे था। अब चीजें कम्युनिकेट करके क्लियर हो गई ना, आपके जहन में खुद ही कुछ चल रहा था कि वो तो ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बैठ के बातें की आपने। तो बातें करके एक फंक्शन ये हुआ कि उसकी गलत फहमी दूर हुई, दूसरा फंक्शन ये हुआ कि अपने आप को बदगुमानी से बचाया, तीसरा फंक्शन ये है कि उसने आपके लिए अब तक क्या क्या किया है उसका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए उसको एक्नॉलेज किया, उसका इजहार किया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुमने बहुत कुछ मेरे लिए किया, जो कुछ तो उसने आपके लिए किया है उसको उसको बयान करें, अपने लफ्जों में बयान करें। ये तीन चीजें हो गई। फिर बातें करने का चौथा फंक्शन ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि उसके और आपके दरमियान क्या कॉमन है। यानी तुम भी इस बात को पसंद करते हो, मैं भी इस बात को पसंद करता हूँ, तुम्हारी भी ये नियत है, मेरी भी ये नियत है, तुम्हारी भी ये ख्वाहिश है, मेरी भी ये ख्वाहिश है, तुम्हारी भी ये जरूरत है, मेरी भी ये जरूरत है, तुम भी ये चाहते हो, मैं भी ये चाहता हूँ, तुम्हारा भी ये ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है, व्हाट्स कॉमन बिटवीन अस। ये चार किस्म की चीजें जो हैं, ये बात यानी आपकी इन चार किस्म के इंसानों से जो कॉन्वर्सेशंस करनी है, उन कॉन्वर्सेशंस को ये चार फंक्शंस पूरे करने हैं, या ये चार ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो कॉन्वर्सेशंस ने उन चार ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्ट्राइव करना है। ये बात क्लियर हो रही है? और ये चार किस्म के फंक्शंस मैंने बिल्कुल स्पेसिफिकली अलग अलग बयान किए हैं। फिर इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि बातें कब की जाएं और कैसे की जाएं, ये अल्लाह हम सबको वो हिकमत अता करे। यानी कैसे करने का मतलब ये कि इंक्विजिटिव नहीं हो, फोर्सफुल नहीं हो, भावी नहीं हो, आप ओवर स्पीक नहीं करें, उसको भी बोलने का मौका दें, पीछे ना पड़ जाएं। कब करने का मतलब ये है कि भाई देखें कि वो अभी इस मूड में है या नहीं, उसका बातें करने का दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, वो रिलैक्स है, वो कंफर्टेबल है, वो अभी कहीं बिजी तो नहीं है, वो ऑक्यूपाइड तो नहीं है, और ये सही टाइम है, सही जगह है, इसी मौके पे इसी वक्त करनी है या किसी और वक्त करनी है, सारी बातें इसी वक्त करनी है, थोड़ी सी बातें अभी करनी है, बाकी जिंदगी में फिर कभी करनी है, तो ये सब समझना है। तो फिर बातें करने का एक पांचवा फंक्शन भी है कि वो जो एक दूसरे को समझना मुमकिन हो सके, एक दूसरे को समझना मुमकिन हो सके। तो अगर बातें करने के पांच फंक्शंस हो गए, उसकी गलतफहमी दूर हो, अपने खुद को बदगुमानी से बचाया जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए, हम दोनों के दरमियान किस चीज पे इत्तफाक है वो बाहिमी इत्तफाक के एरियाज तलाश किए जाएं, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, और फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे की मदद हो सके, ये पांच फंक्शंस हो गए। और कब करनी है, कैसे करनी है, उस पर मैंने कुछ थोड़ी सी। अब इसमें क्या होता है, जब हम उससे बात नहीं करते ना जिसका मसला है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं और सबसे करते हैं। तो अल्लाह करे कि हमें ये समझ हो कि हम उसके बारे में बात करते रहते हैं या उससे बात करते हैं। मतलब कुछ लोग उसकी बात, वो उसके बारे में जितनी बात करते हैं उतना उससे बात नहीं करते, ये एक प्रॉब्लम है। मतलब बहुत से लोगों को इस दुनिया में जिससे तकलीफ है ना, उससे इतनी बात नहीं की जितना उसके बारे में दुनिया से बात की। मतलब यानी उससे जो बातें की हैं उसका टोटल ड्यूरेशन शायद मिनट में है, या सारी जिंदगी में 2 घंटे उससे बात की है, लेकिन 200 घंटे उसके बारे में बात की है, वहां प्रॉब्लम। यानी दूसरों से उसके बारे में बात नहीं करें, उसी से बात करें, और उस बात कैसे करें वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। फिर छठा पॉइंट ये है, ये जरा सा एक समझने वाली बात है, अगर आप इस ताल्लुक में रहना चाहते हैं और इस ताल्लुक को अच्छा बनाना चाहते हैं और इस ताल्लुक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर बुरा मानना छोड़ दीजिए इनके वो रवैये। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं तो मैं मतलब वो कहते हैं नहीं बुरा मानना कैसे छोड़े, मैं तो बुरा मानूंगा। और मुझसे मैं फिर उनके साथ काउंसलिंग सेशंस होते हैं या मैं बातचीत करता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ये तो इसने तो ठानी हुई है, मैं तो माइंड करूंगा, माइंड करने की ओर ये, मैं कहता हूँ यार माइंड नहीं करो, कहते नहीं माइंड क्यों नहीं करो, तो ये एक मुझे नजर आता है। तो फिर मैं उनसे जो बात मतलब ये होता है बहुत से लोगों का मसला, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखो इतना अरसा साथ रहने के बाद अब तो तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई ना, अब तो तुम्हें आ गया ना कि इसके साथ कैसे रहते हैं। मतलब बहुत से लोग मेरे पास आए किसी की शिकायत लेके, किसी का मसला लेके, तो मैंने पूरा सुना, फिर मैंने कहा देखो जब तुम उनकी जिंदगी में आई थी या वो तुम्हारी जिंदगी में आया था या वो तुम्हारी जिंदगी में आई थी, तो उसका हर अमल तुम्हारे लिए अनप्रेडिक्टेबल था। अगर मैं ये कहूं कि ही और शी वॉज 90% अनप्रेडिक्टेबल, क्या क्या करेगा इस लम्हे, क्या करेगा अब, क्या करेगा फिर, क्या होगा, ये क्यों सोच रहा है ये, बिल्कुल आप उसको आप हर वक्त बस शॉक में ही होते थे, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। और अब उसका कौन सा अमल ऐसा है जो अनप्रेडिक्टेबल है? वो इंसान जिसकी हर हरकत आपके लिए या जिसकी 70% 80% मामलात आपके लिए प्रेडिक्टेबल हैं, उसके बिहेवियर्स, उसकी हरकतें, उसके मामलात, उसके रिस्पॉन्सेस, तो अब तो इसका मतलब है आप बहुत ट्रेन हो गए ना, आपको तो माशाल्लाह अल्लाह ने पूरी अब अता कर दी ना सलाहियत, तो बस अब क्या मसला है? तो अब आप इसको सोच क्यों रहे हैं, इसको परेशान क्यों हो रहे हैं, बस इसको एक्सेप्ट कर लें। तो बाज़ोकात क्या होता है कि हम बहुत मतलब उन चीजों पे माइंड कर रहे होते हैं ना, मतलब मैं कहता हूँ भाई अब आप उस चीज को सोचा करें जो अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन जो प्रेडिक्टेबल है अब उसकी तो सारी चीजें प्रेडिक्टेबल है ना, अब उनकी कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल नहीं है ना आपके लिए। तो अब तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ट्रेनिंग पूरी हो गई। मतलब वो ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरी ट्रेनिंग तो हो गई ना कम से कम, वो तो वैसे ही रहा, लेकिन मुझे अल्लाह ने ये सिखा दिया कि भाई उनकी ये चीजें कितनी मतलब अब मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं उसे बिल्कुल मैं फोर्सी कर सकता हूँ, मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि अब इस सिचुएशन में वो क्या होगा। तो मैं ये जो अल्लाह ने आपको सलाहियत अदा की है इसका शुक्र अदा करें। अगर ये आपके अंदर ना पैदा होती और 17 साल के बाद भी यानी इतने ही अनप्रडिक्टेबल होते तो फिर सिचुएशन खराब होती ना। तो इसको इसको समझिए। तो दरगुजर करना एक लफ्ज है, दरगुजर करना एक लफ्ज है, माफ करना एक लफ्ज है, दरगुजर करना, ये दोनों बहुत रिलेटेड लफ्ज हैं, इनको जरा समझने की जरूरत है। दरगुजर करना किसे कहते हैं? दरगुजर करना कहते हैं मसला तो वही है, लेकिन अब आप उस मसले को माइंड नहीं करते, आपने कहा ठीक है बस सही है कोई बात नहीं, इस मसले को आप नोटिस नहीं करेंगे बस ठीक है। तो आपने ये सोचना है अब जिस चीज को आप दरगुजर करते हैं ना उस पर रिग्रेट नहीं करते, और फिर आप एक दफा तय कर लेते हैं ना बस ठीक है इस मैटर को मैं नहीं सोचूंगा बस। तो बहुत से लोग ना बहुत अरसे से मैंने बहुत सी माएं अपने बेटे के उस मसले पे परेशान है कि वो जो है ना अपने कपड़े सही जगह पे नहीं लटकाता, सही जगह पे नहीं डालता। तो भाई वो तो ऐसे ही है, अब क्या करें, मतलब अब आप इस बात पे इतना कुड़ती रहेंगी और अपने बेटे से अपना ताल्लुक खराब रखेंगी, तो बस इसको मतलब उस अपने बेटे को उसकी खराबी के साथ कबूल कर लीजिए। तो जैसे वो प्याज जो है ना वो आंसू निकाल देती, आप उसको फेंकते नहीं, अभी आपने नहीं सोचा कि उसको फेंक दूं, तो बहरहाल सोचिएगा इस बात को। बल्कि मैं इसमें एक और बात भी, वो हो सकता है इससे एक और तासुर जा रहा हो कि क्या हम उनको जो गलत बात है उसको हम इंडोर्स कर दें, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा इसको भी। मैं देखिए अपने उसूलों से दस्तबरदार हुए बगैर उनकी बेउसूली को अपने ताल्लुक में मजाहिम ना होने दें, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आई रिपीट, अपने उसूलों से दस्तबरदार हुए बगैर उनकी बेउसूली को अपने ताल्लुक में मजाहिम ना होने दें। अल्लाह मुझे और आपको इस काबिल बनाए, मतलब आप जिस चीज को बिल्कुल गलत समझते हैं वो उसमें पूरे तौर पर मौजूद है, तो आपने उसको उसकी सारी खराबियों के साथ कबूल किया हुआ है, उससे मोहब्बत भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसानों की उन चार कैटेगरीज में है ना जो अपने हैं, जो जो चार किस्म के लोग मैंने बयान किए हैं, अभी सिर्फ उनकी बात हो रही है, अभी दुनिया की बात नहीं हो रही, अभी इन चार लोगों की बात हो रही है जो घर में हैं, बहन भाई अम्मा अब्बा औलाद और आपके स्पाउस। तो ठीक है आप जिस चीज को आप बहुत गलत समझते हैं और वो उनमें बहुत ज्यादा है और आपने उनको कबूल किया है, लेकिन आप गलत को गलत अभी भी समझते हैं और इसके नतीजे में ये नहीं हुआ कि आपको वो गलत आपके लिए सही हो गया, बस ठीक है, आप उस चीज को अभी भी गलत समझते हैं, लेकिन उस आदमी को बहरहाल उसकी खराबी के साथ आपने कबूल किया हुआ है, अगर आपने कबूल किया हुआ है तो ठीक है। यानी देखिए, आप इस बात से गिव अप नहीं कर रहे कि इस अमल को छोड़ा जाए, आप कह रहे हैं ठीक है इस अमल को ठीक करना है, इस अमल को छोड़ना है, आप कह रहे हैं कि हाँ ये गलत बात है इसको नहीं, लेकिन अपने असल में होता क्या है, ये दो अलग चीजें हैं। आपका ताल्लुक खराब अगर हो गया तो आप वो बंदा नहीं है जो उनकी इसलाह कर सके, तो आपको अपने ताल्लुक को ठीक रखना है, आपने अपने ताल्लुक को जिंदा रखना है, और ठीक है वो जो गलत हरकत कर रहे हैं आपने उसको, उस पर भी गिव अप नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे आपने गिव अप कर दिया, आपने कहा बस ठीक है अब चूंकि मैंने इनके साथ ही रहना है तो इनकी गलत हरकत को अब मैंने सही समझना है, नहीं, उनकी गलत हरकत को गलत ही समझिए, लेकिन उनके साथ अपने ताल्लुक को ठीक कीजिए, ये है, अल्लाह ये हिकमत अता करे। सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि आप दुआ कीजिए, और दुआ ताल्लुक के हवाले से जब हम दुआ करते हैं ना, तो कई बातें उसमें कई बातें हैं। या अल्लाह इन तमाम इंसानों को मेरे हक में नेमत बनाइए, या अल्लाह इन तमाम इंसानों को मेरे लिए बाईस खैर बनाइए, मुझे इनके हक में नेमत और बाईस खैर बनाइए, इनको मेरी आंखों की ठंडक बनाइए, मुझे इनकी आंखों की ठंडक बनाइए, मेरे और इनके दरमियान एक इस्लाही ताल्लुक पैदा फरमा दीजिए, इनको मेरे और मुझे इनके तजकिए का जरिया बना दीजिए, इनके ताल्लुक से मेरे अंदर और मेरे हम हमारे बाहिमी ताल्लुक से हम सब के अंदर इल्म खैर अखलाक ये बेहतर होने का जरिया बनाइए, और हम मुझसे जो गलतियां हुई हैं इनको तौफीक दीजिए कि वो माफ कर दें, इनसे जो गलतियां हुई हैं अल्लाह करे कि मैं इन मतलब आप माफ करें और फिर इनको माफ कीजिए। तो ये एक मुस्तकिल उनके हक में भी वो दुआ कीजिए जो आप अपने हक में कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और दुआओं से जिस इंसान के पास दुआओं की कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये जो इसको इसको जब वो अपना बरोए कार लाता है तो फिर वो मायूस नहीं होता।